SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। 5 राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले जुबानी जंग तेज से तेजतर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 15 दिन पहले सरदार पटेल की जयंती पर अपने भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल अपनी चुनावी सभाओं में जोर शोर से कर रही है। आजमगढ़ चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री यादव के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे जैम का नाम दिया।
मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए?
जवाब में श्री यादव ने कुशीनगर में भाजपा पर वापस हमला बोलते हुए कहा,
उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है।
इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने शासन को भयमुक्त बता जनता को लुभाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।
2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था, सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और एक महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती भी बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा?
उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंडित नेहरू की 132वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में हो रही हत्याओं को लेकर योगी शासन पर निशाना साधा।
अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसिंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे, पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए, उन्नाव में जो हुआ, मैं जब उनके घर गई, उनकी बातें सुनी मैंने, मुझे लगा कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उनका भी शायद अधिकार ये सरकार नहीं पहचान रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वे वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस मालवाहक हवाई जहाज C-130J से आएंगे जो सुल्तानपुर के निकट एक्सप्रेसवे पर ही लैंड करेगा। सरकार इसे देश में लड़ाकू हवाई जहाजों को आपातकालिक लैंडिंग सुविधाएं देने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन इस अनूठे प्रयोग को चुनावों से पहले जनता को मोदी और योगी शासन की उपलब्धियाँ गिनाने का एक माध्यम भी माना जा रहा है। श्री अखिलेश यादव 16 नवंबर के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चुनावी सभा करेंगे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के एवज में भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की गई कथित हिंसा का असर महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रजा एकेडमी नामक एक संस्था ने त्रिपुरा के पानी सागर में मस्जिद को नुकसान पहुँचाए जाने की कथित घटना पर विरोध प्रकट करने के लिए बंद का आह्वान किया था, जो भीड़ जुटने के बाद हिंसक हो गया। उपद्रव रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई स्थानों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के अलावा अमरावती में लोगों का जमावड़ा रोकने के लिए दफा 144 भी लगा दी है। हिंदू शिवसेना के श्री संजय राउत ने घटना को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश बताया।
महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों, या पूरे देश में हिंदू है ना, सब जगह पर रिएक्शन उठने चाहिए। जो सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या?
त्रिपुरा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना को झूठ बताया है और झूठ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस विषय में त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा का भी बयान आया है।
हमारे लिए त्रिपुरावासी के लिए बहुत ही शर्म का बात है कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है वो समझ नहीं आता है। ये हमारा त्रिपुरा का इतिहास का गरिमा है, कुछ आदमी लोग कुछ आके इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरो राजनीति के लिए फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज जो दूसरे देश की है वो दिखा रहा है। तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा में अभी भी अवस्था सामान्य है, नॉर्मल है।
त्रिपुरा सरकार ने हिंसा पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने वालों और स्थिति की जानकारी लेने गए 102 पत्रकारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर आतंक रोधक कानून UAPA की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है, जिसकी कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं ने निंदा की है। सरकार के कोप से बचने के लिए कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने अपील का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख तय करने का निर्णय लिया है। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब चूराचांदपुर जिले में उग्रवादियों ने गत शनिवार असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और चार अन्य सैनिकों की IED ब्लास्ट द्वारा घात लगाकर हत्या कर दी। हमले में कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मृत्यु हो गई। घटना पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह समेत कई नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। कर्नल त्रिपाठी को भारत और छत्तीसगढ़ का सच्चा और बहादुर सपूत बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जाने को अपूर्णीय क्षति बताया है। कुछ ही दिन पहले पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से उनकी पूरे भारत में भारी आलोचना हो रही है। एक निजी चैनल के साथ बात करते हुए सुश्री रनौत ने कहा,
ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी ब्लड। दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है।
कई राजनीतिक दलों ने न केवल उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की है बल्कि उनके मोदी समर्थक होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और इस बयान पर सफाई मांगी है। देश के कई शहरों में कंगना के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। T20 विश्व कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा ऑस्ट्रेलिया नया विश्व विजेता बन गया है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कप्तान केन विलियमसन के केवल 48 गेंदों पर 85 रनों और मार्क गुप्तिल के 23 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 172 रनों की चुनौती रखी। जोश हेजलवुड ही प्रभावी गेंदबाजी कर पाए और उन्होंने 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सधावह आक्रमण करते हुए 7 गेंद शेष रहते केवल 2 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। डेविड वार्नर ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि मिचेल मार्श 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से मात्र 50 गेंदों में 77 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। डेविड वार्नर को टूर्नामेंट में धुआंधार 289 रन जुटाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को मिला। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टूर्नामेंट में अपनी टीम के बारे में बात की। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।